तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो बेरोजगार लोग हैं, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी करने में असमर्थ हैं, खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार तो है, लेकिन वो समझते हैं कि वो रोजगार इतना सक्षम नहीं है कि उनके जीवन को बेहतर बना सके, जिसके चलते वो खुद को बेहतर रोजगार की ओर बढ़ाना जरूरी महसूस करते हैं, इसलिए वो खुद को बेरोजगार जैसा ही मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोजगार तो अच्छा है, लेकिन वो उसको बदलना चाहते हैं, उससे शिफ्ट होना चाहते हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं, वहाँ उनका मन नहीं लगता, उनको वो अच्छा नहीं लगता, चाहे जो भी कारण हो। अब ऐसे में कई तरह के सवाल तो बनते हैं, लेकिन मूल रूप से जो बेरोजगार है उन पर आज चर्चा हम लोग करेंगे और ये बातें समझेंगे। और जो मूल रूप से बेरोजगार लोग हैं जिनके पास में कोई खास काम नहीं है जिससे उनकी गुजर बसर अच्छे से हो सके, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग अपनी बेरोजगारी का जो जिम्मा है वो दूसरों के माथे मढ़ देते हैं, वो दूसरों को ये दोष देते नज़र आते हैं कि वो बेरोजगार क्यों हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं। जैसे में वो ये बातें कहते हैं कि वो बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, वो गरीब घर में पैदा हो गए, उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, उनको प्रॉपर एजुकेशन के लिए गाइडलाइन नहीं मिला, अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला, सही उनको ट्यूटर नहीं मिले, प्रोफेसर नहीं मिले, माहौल नहीं मिला, उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं हुई, उनको जो कुछ मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। लेकिन इन सबको देखते हुए वो यही बातें सुनाते हैं कि कमी उनमें नहीं थी, कमी बल्कि बाहर किसी दूसरे तीसरे चौथे में थी, सिस्टम में थी, और उनकी वजह से वो बेरोजगार बन गए। लेकिन आज की जो बातें हैं वो इन सबसे अलग है। बेरोजगारी के कुछ ऐसे पहलुओं पर आज आप डिस्कोर्स सुनने वाले हैं या वाली हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारियों की बातें होंगी कि किस तरह से आपका जो ये जीवन की स्थितियां हैं, ये जो हालात हैं, बेरोजगारी का जो माहौल है जीवन में, उसके लिए कितने आप जिम्मेदार हैं, आपकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पर किसी भी रोजगार को पाने के लिए आपको किसी खास तरह का एजुकेशन ट्रेनिंग मिलना जरूरी होता है, लेकिन उस ट्रेनिंग को पाने के लिए, उस एजुकेशन को समझने के लिए और इन सब को प्रैक्टिकली यूज करके अपने को किसी बिजनेस लायक बनाने के लिए या किसी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो देखा जाए तो बाहर से ज़्यादा ज़रूरी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे गए हैं, ऐसे भी बेरोजगार लोगों को देखा गया है जिनके पास में कई तरह के संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका एजुकेशन हुआ, अच्छे जगहों पर ट्रेनिंग उन्होंने ली, अच्छी जगह पर ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी उनके पास में कोई खास रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाया, वो बेरोजगार ही बन के रह गए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको आपके सोसाइटी में, समाज में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। और बेरोजगारी का जो आलम है, जिस हिसाब से स्थितियां परिस्थितियां देखने समझने को मिलती है, इन सब के बीच में आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली इस बेरोज़गारी के लिए बाहर के लोग कितने ज़िम्मेदार हैं और आप स्वयं उसके लिए कितने ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ सीखनी हो, कोई ट्रेनिंग लेनी हो, किसी खास तरह का एजुकेशन आपको किसी खास तरह के जॉब के लिए या किसी खास तरह के काम के लिए लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब के लिए आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है, आपका मन उसके साथ होना ज़रूरी है, आपको वो बातें समझ में आनी ज़रूरी हैं और आपका उन सब के साथ में एक होना ज़रूरी है। क्योंकि क्लासरूम में बैठने के बावजूद भी जो एजुकेशन वहाँ पे देने वाले टीचर दे रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स के कानों तक पहुँच नहीं पाती और वो अपने किसी दूसरे ही मन की दुनिया में कुछ सोचते हुए पूरे क्लास को अटेंड कर लेते हैं और क्लास उनको समझ में भी नहीं आता, सुनाई भी नहीं पड़ता और वो क्लास में पिछड़ जाते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं। निश्चित तौर पर आपके जो निजी संसाधन हैं जो कि आपको रोज़गार दिलाने के लिए ज़रूरी है, वो भी आपके रोज़गार के लायक होने ज़रूरी हैं। यदि आपका ऐसी चीज़ों में मन नहीं लगता हो, चूँकि देखा जाता तो ऐसा ही है कि ज़्यादातर जो बेरोज़गार लोग हैं वो भी खाली नहीं बैठे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बात अलग है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनसे कोई जॉब नहीं मिलता बल्कि उससे समय की बर्बादी होती है। वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, कोई बातचीत हो या कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ उनके जीवन की हो जिसमें वो कुछ ना कुछ करते तो हैं लेकिन उस एक्टिविटीज़ का कोई प्राइस वैल्यू नहीं होता, उस एक्टिविटी के चलते किसी जॉब के लायक एलिजिबिलिटी नहीं बनती या उसके द्वारा कोई बिजनेस नहीं हो पाता, इसके चलते वो खाली बैठे होते हैं, उनके पास में कोई काम धंधा नहीं होता। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कुछ भी आपको सीखना हो तो उसके लिए फिजिकली मेंटली आपको उस काम के साथ बने होना जरूरी होता है। इसमें कई तरह की बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे यदि आपको एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मनोरंजन बहुत अच्छा लगने लगा है अपने जीवन में और आप उसकी तलाश में निरंतर रहते हैं या रहती हैं ताकि आप खुद को खुश रख सकें, तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आखिर एंटरटेनमेंट के अभाव में आपको होता क्या है, ऐसा क्या महसूस होता है, ऐसी क्या बेचैनी होती है कि आपको मनोरंजन इतना ज़रूरी महसूस होने लगता है। ऐसे लोग जिनके पास एक समय में एजुकेशन के लिए किताबें नहीं हुआ करती थीं, नोटबुक्स नहीं हुआ करते थे या जो भी उनके पास रीज़न हो, आज उनके पास भी फ़ोन है, उस फ़ोन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, रिचार्ज है, हर महीने पैसे डलते हैं उसमें, हर महीने रिचार्ज हो रहा है। ये जो चीज़ें उपलब्ध हो गई ये इसीलिए हुई क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत जैसी चीज़ें महसूस होने लगी, उनको चाहिए, सुनना है, देखना है, सोशल मीडिया पर एक्टिव बने रहना है। कई तरह की ऐसी चीज़ें वहाँ पर हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको अच्छाई का एहसास कराता है। निश्चित तौर पर जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनके जीवन में कई तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ निगेटिविटी के साथ देखने को तो मिलती ही हैं, कई तरह के ताने सुनते हैं, कई तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, जीवन में तरह तरह की समस्याएँ होती हैं। लेकिन फ़ोन जो होता है वो किसी तरह की समस्या के लिए उनको टोकता नहीं है, कोई कमेंट नहीं करता बल्कि उनको खुश रखने का भरपूर इंतज़ाम करता रहता निरंतर। उसमें जो ऐप्स होते हैं वो बराबर उनको अपने साथ बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। अब ऐसे में जीवन की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो नकारात्मक माहौल है, जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से जो वो टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, इन सब से कहीं ना कहीं फ़ोन उनको राहत दे रहा होता है। अब ऐसे में उनको फ़ोन ज़्यादा भाने लगता है और फिर वो फ़ोन के बिना रहना पसंद नहीं करते। अब यदि आपका एक लंबा समय जीवन का एक अच्छा खासा समय फोन में जाने लगे तो फिर आप बेरोजगारी को दूर करने वाले वो स्किल्स सीखेंगे कैसे? उसको पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा कब, जब आपके पास वक्त ही नहीं होगा। अब ऐसे में ये वक्त यदि फ़ोन को मिल गया और आपने सीखने समझने और ख़ुद को विकसित करने का जो वक्त था वो फ़ोन को ही दे दिया, तो ऐसे में वो चीज़ कैसे आपको आएगी, वैसे हुनर कैसे आप में विकसित होंगे, वैसा टैलेंट कैसे डेवलप होगा, आप खुद को इतना शिक्षित कैसे कर पाइएगा जिसके सहारे आप कोई जॉब ले पाइएगा। निश्चित तौर पर फ़ोन के सहारे भी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है ये उनकी सफलता से आज नहीं तो कल पता चल जाता है। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि मनोरंजन भी बहुत हद तक आपको बेरोजगार बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा होता है यदि आप अपने जीवन का 2 घंटे से ज़्यादा उसको प्रतिदिन देते नज़र आते हैं या आती हैं। तो ऐसे में इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा जो मनोरंजन का साधन बनकर जीवन में बहुत तेज़ी से शामिल होता जा रहा है, वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आज के यूथ को, युवा वर्ग को बेरोज़गारी के रास्ते पर भी लेके जा रहा है। एक समय में नशे के सहारे यूथ को भटकाया जाता था, उनकी क्षमता जो है उसको विकसित नहीं होने दिया जाता था। आज कुछ ऐसा ही काम फोन एडिक्शन से होता जा रहा है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यदि आप बेरोज़गार हैं तो तुरंत आप अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में फ़ोन को ढूंढिए कि आपने फ़ोन के जिम्मे कितना समय दे रखा है, कितना वक्त आपके फ़ोन के द्वारा प्रतिदिन आप बर्बाद कर रहे हैं, और यदि वहां से कुछ सुख सीख रहे हैं तो आबाद कर रहे हैं। यानी कि फोन को आपने कितना समय दे रखा है इसका आकलन आपके पास होना जरूरी है। इस बात को भी समझना जरूरी है कि इंटरटेनमेंट को बंद करने की बात नहीं हो रही है, कि जब तक जॉब नहीं, जब तक बिजनेस नहीं, जब तक पैसा नहीं, तब तक कोई मनोरंजन नहीं। निश्चित तौर पर जीवन की ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहाँ पर आपके मेंटल इमोशनल जो सिचुएशंस होते हैं लाइफ के, वो निगेटिविटी की ओर चले जाते हैं, यानी कि आपको स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एन्जाइटी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके चलते टेंशन होने लगता है। अब ऐसे में मनोरंजन बहुत हद तक आपको इन सबसे बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता नज़र आता है, और ये प्रैक्टिकली लोग महसूस करते हैं, इसके चलते भी लोग उधर जा रहे होते हैं। अब ऐसे में मनोरंजन को एकदम से बाइकॉट नहीं करना है, आप उसके लिए कोई समय फिक्स कर लीजिए अपने लाइफ में कि आपको इतने देर एंटरटेनमेंट के लिए देना है, और इतने उससे कई गुना ज़्यादा समय अपने रोज़गार, अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए देना है, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए देना है, अपने एजुकेशन को देना है, ताकि वो सब चीज़ें आपके फ्यूचर में काम आए, जिसके सहारे ज़िंदगी में वैसी चीज़ें आपको प्राप्त हो सके जो कि आपके बेरोज़गारी को समाप्त कर सके। तो ऐसा करना ज़रूरी है। ये तो पहला हुआ आपका एंटरटेनमेंट, जो कि देखा जाए तो एक ऐसा माध्यम है जो बाहर से ही आता है आपके पास में। अब अंदर की ओर चलते हैं। है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर सबको लेकर के चले हम लोग तो संडे स्पेशल के कई पार्ट्स उसमें लग जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग मेंटल की ओर। अब जब आप माइंड में जाइएगा तो यहाँ आपको अपने आप में बहुत बड़ी बात होती नजर आएगी अगर इन बातों को अच्छे से आप सुने और समझें, तो कि सीखने, समझने और आगे बढ़ने में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका है तो वो आपके मन की भूमिका है। क्योंकि आपका मन अगर एकाग्र नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आपका फोकस वहाँ नहीं है, तो चाहे जितने भी अच्छे स्कूल या अच्छे टीचर या दुनिया की सबसे अच्छी किताब आपको दे दी जाए, आपका अगर वहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो आप वहाँ से कुछ भी सीख नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। इसलिए आपके मन का वहाँ होना जरूरी है। और मन वहाँ पर हो इसके लिए मन को समझना जरूरी है। लेकिन विडंबना ये है कि आपको फिजिकली सिखाने के लिए पूरी दुनिया तरह तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स, एजुकेशन सिस्टम्स जैसी चीज़ें डेवलप करके चारों तरफ आपको उपलब्ध कराती नज़र आती हैं, लेकिन माइंड के लिए, मेंटल एजुकेशन के लिए आपको ऐसी चीज़ें ना के बराबर देखने को मिलती हैं। अब मन का प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो होता नहीं। जिस चीज़ में कंसंट्रेशन होता है उससे जॉब मिलता नहीं, उससे बिजनेस होता नहीं, उसके द्वारा ज़्यादातर लोगों को बेरोज़गारी ही मिल जाती है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें कैसे ठीक हों, मन को ऐसे चीज़ों में कैसे लाएं जो आपके जीवन की बेरोज़गारी को दूर करे। ऐसी बहुत सी बातें हैं मन के बारे में जो पता तो नहीं है, लेकिन जब मन सही तरीके से विकसित नहीं होता तो उसके विकृत रूप से पूरी जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसके कारण आपको पता होने के बावजूद भी कि ऐसी शिक्षा लेने से, ऐसा ट्रेनिंग लेने से, इस तरह के काम को समझ लेने से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और कई बार तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, जिसके सारे संसाधन आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद अपने समस्या के समाधान पर आप कुछ विशेष कर नहीं पाते और समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं, और उनमें से एक समस्या आपकी बेरोजगारी भी होती है। निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों को लेकर के एक मन की बड़ी समस्या बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और वो है आपके मन में एक खास तरह का मेंटल एक्टिविटी जो आपको किसी भी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के लिए बाध्य करती है, और वो है आपका ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग शब्द से आप सभी परिचित होंगे, कभी ना कभी आपने ये सोचा होगा, सुना होगा ये ओवरथिंकिंग क्या है, और आपने महसूस भी किया होगा ओवरथिंकिंग के बारे में कि ओवरथिंकिंग आप भी कहीं ना कहीं करते हैं या करती हैं। अब ये जो ओवरथिंकिंग है, अगर आप इसे जीवन का हिस्सा बना लीजिए तो इसके जो कारनामे हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और इन कारनामों के फलस्वरूप जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जीवन में, उनमें से एक आपकी बेरोजगारी भी है। क्योंकि जब ओवरथिंकिंग जीवन में शामिल होता है तो कई तरह की चीजें जीवन में होने लगती हैं, और समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि आप स्वयं उसके साथ होते हैं, उन सबको कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनको रोकते नहीं, और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग आपके ऊपर हावी होता चला जाता है और जीवन ओवरथिंकिंग की लत से लैस होती है, ओवरथिंकिंग के शिकार बन जाते हैं लोग, कई बार तो गुलाम भी बन जाते हैं। अब ओवरथिंकिंग के ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनको आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें आप लोगों ने ये समझा है कि ओवरथिंकिंग के चार प्रकार हैं। ओवरथिंकिंग के चार प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहला वो है जिसमें वो लोग आते हैं जिनको ओवरथिंकिंग के बारे में समझ होती है। वो मन की मर्यादा जानते हैं, वो समझते हैं कि कहाँ तक मन को चलाना है और कहाँ से फिर काम पर लग जाना है। वो इस दायरे को बखूबी महसूस करते हैं, जिसके चलते वो ओवरथिंकिंग को जीवन में शामिल होने ही नहीं देते हैं। ये बात अलग है कि ऐसे लोग रेयर होते हैं और जहाँ भी होते हैं वो काफ़ी ऊंचाइयों पर होते हैं अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में। दूसरे वो लोग होते हैं जो ओवरथिंकिंग करते जरूर हैं, लेकिन उस ओवरथिंकिंग को जीवन की जरूरी गतिविधियों से बिल्कुल दूर रखते हैं। वो सिर्फ ओवरथिंकिंग अपनी कल्पनाओं में ही करते हैं, मन में मेंटली ओवरथिंकिंग कर रहे हैं जो। अब देखिए, ओवरथिंकिंग तो मन में ही करते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है जरूरी एक्टिविटीज़ और मन, मतलब कि मन में जो काल्पनिक बातें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, बस वहीं तक वो सीमित रखते हैं। जीवन की जो जरूरी काम है, कुछ सीखना है, पढ़ना है, कोई काम करना है, किसी खास तरह का डिसीज़न लेना है, उस पर बने रहना है, कोई लक्ष्य बना करके उस पर चलते रहना है, इन सब पे वो ओवरथिंकिंग नहीं करते। ओवरथिंकिंग को इससे वो अलग रखते हैं। तो ये दूसरे वर्ग के लोग होते हैं और यही दुनिया चलाते हैं। जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो विकसित हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा करियर उनका है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने स्किल के ऊपर उन्होंने काम करके अपने स्किल में बहुत कुछ हासिल किया है, वो सभी दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो ओवरथिंकिंग को अपने काम पर हावी नहीं होने देते, अपने काम पर हावी होने नहीं देते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो कि ओवरथिंकिंग को काम पर हावी होने देने लगते हैं। अपने काल्पनिक दुनिया में तो वो ओवरथिंकिंग करते ही हैं, लेकिन काम को भी अपनी कल्पना का हिस्सा बना लेते हैं और उसके ऊपर भी वो ओवरथिंकिंग कर करके अपने काम को डिस्टर्ब कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि अपने काम में वो अच्छे से बने नहीं होते हैं, और अच्छे से बने नहीं होने की वजह से वो ओवरथिंकिंग के सहारे बहुत से काम को करने लगते हैं। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका ओवरथिंकिंग पर जाता है, अपने प्रैक्टिकल काम को वो कम करते हैं और ओवरथिंकिंग से ही उसका प्रैक्टिकल मन में ही करके उनकी उपलब्धियां वगैरह सब हासिल करने लगते हैं। अब इन सब को करने की वजह से इन लोगों का जो जीवन होता है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से विकसित होता है, और ये निर्भर करता है कि कौन कितनी मात्रा में ओवरथिंकिंग को अपने जीवन के जरूरी कार्यों के ऊपर करना सीख गया है या सीख गई हैं। अब ये जो लोग होते हैं ये तीसरे कैटेगरी में आते जरूर हैं, लेकिन इनके सभी सदस्य, इसमें रहन जीने वाले सभी लोग ओवरथिंकिंग की लत के शिकार नहीं होते हैं, उनको इसकी लत नहीं लगी होती है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा ओवरथिंकिंग के हाथों सौंप देते हैं, वो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग को जीवन के हर हिस्से में ही करने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग की लत उनको लग जाती है और वो ओवरथिंकिंग के शिकार बनने लगते हैं। अब ऐसे में जब ऐसा कोई करने लगे तो यहीं पर समझने की ज़रूरत है कि ये ओवरथिंकिंग बेरोज़गार बनाता कैसे है। अब होता यहाँ ये है कि जब किसी भी काम के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी खास तरह के कोई एजुकेशन के बारे में, स्किल के बारे में, ऐसा कोई भी सिस्टम हो, ऐसा कुछ भी आपको सीखना हो, इन सब के बारे में जब आपको कुछ पता चलता है, आप जानते हैं, सुनते हैं, तो उसके बाद में आपको आपको ऐसा बहुत कुछ करना होता है जिसके सहारे आप उसमें आगे बढ़े, उसको सीखें और आगे उन चीज़ों को लेकर के जीवन में चलते रहें। लेकिन होता यह है कि अब इनके बारे में लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और जब आप ओवर थिंकिंग करने लगिएगा तो फिर आपका मन उस पर ज़रूरत से ज़्यादा चलना शुरू करेगा, और चलते 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 उसके ऊपर इतना चल जाएगा कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से अब उसे रियल लाइफ में करने को तैयार ही नहीं होंगे, मन में ही करने लगेंगे। मेंटली कई तरह की कल्पनाएं होंगी, फ्यूचर प्लानिंग होंगी, तरह तरह की चीज़ें आप सोचने लगेंगे, एक्सपेक्टेशन से बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर लेंगे, कई तरह की उम्मीदें आपकी हो जाएंगी, कई सपने आप संजो लेंगे, कई तरह की ख्वाहिशें आपकी बन जाएंगी। लेकिन आप काम नहीं करेंगे, काम अगर करने को कहा भी जाए तो थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद फिर आप ओवर थिंकिंग में ही लग जाएंगे। अब ऐसा करने पर होता ये है कि आपको अच्छा लगता है, और ये अच्छा लगने की अनुभूति पाने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। लेकिन रियल लाइफ में अगर उसको पाना हो अपने मेहनत के बल पर, तो अब आपको वहाँ पर उस खास तरह के एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, स्किल के लिए, वो चाहे जो कुछ हो उसके लिए अगर आपको उसमें जाना पड़े, तो फिर आपको फिजिकली उसमें मेहनत करना पड़ेगा, अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसमें जब आप पहुंचिएगा तो कई तरह की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी होता है। अब वो चूंकि उसका हिस्सा है तो आपको सीखना पड़ता है। अब इनमें जो मेहनत लगता है, आप उसके साथ जो स्ट्रगल करते हैं या करती हैं, उनके साथ में जो दिक्कतें आती हैं, इन सब का जो कष्ट होता है, इन सब में जो परेशानी होती है, इन सब में जो तनाव होता है, इन सब में जो आपको बहुत जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन सब से बचना ओवर थिंकिंग आपके लिए आसान कर देता है। सिर्फ सोचिए और आपको वो चीज़ें महसूस होने लगती हैं। लेकिन करेंगे तो ये सब कुछ करना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने वाले लोग काम करने से भागने लगते हैं, कुछ नया सीखने से भागने लगते हैं, और देखा जाए तो वो मेहनत से ही भागने लगते हैं, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता सफलता के लिए। ये बात सबको समझने की जरूरत है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता सफलता के लिए। इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में आप रख लीजिए, और ये मेहनत मन में नहीं, फिजिकली होना चाहिए। जिस तरह की ज़रूरत है उस काम में मेहनत की, वो मेहनत होना चाहिए, न कि सिर्फ आप मन में ही कल्पना किए जा रहे हैं और तो ऐसा होगा नहीं। तो जो तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से भागते हैं, और वो मन में ही उसके बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है कि जब बिना किसी काम के, मेहनत के, वो एक समय के बाद अपनी उपलब्धियों को भी जांचना परखना शुरू कर देते हैं। इतना समय बीत गया और इससे ये हमको प्राप्त होने को था, तो अब हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या हमको मिल रहा है, चलो एक बार देख ही लेते हैं, और उसका हिसाब लेने बैठ जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग में तो उन्होंने कई तरह की चीज़ें सोच रखी हैं, उस सोच से अपनी उपलब्धि को जो वो बिना कुछ किए या थोड़ा बहुत मेहनत से प्राप्त किए होते हैं उससे मैचिंग करते हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत दुख होता है, उनको काफ़ी तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि जो सोच रखे हैं वो तो मिल नहीं पा रहा। अब ऐसे में कई बार तो लोग यहाँ पर ऐसी बातें सोचने लगते हैं कि इससे तो मिलेगा ही नहीं, तो इसको बंद ही कर दो, इससे बाहर रहना बेहतर है, इतना समय बर्बाद कर लिए, ये वो नहीं सोचते कि वो जो समय बर्बाद किए हैं वो ओवर थिंकिंग पर किए हैं, ना कि काम पर किए हैं। अगर काम पर किए होते हैं तो ओवर थिंकिंग की कल्पना ही नहीं हो पाती, और उस कल्पना से इसको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं हो पाती, क्योंकि आप अपने यथार्थ के साथ में जी रहे होते, आप अपनी उपलब्धियों को पल पल महसूस कर रहे होते, कितना आपने सीखा है, किस चीज़ को सीखना है, किस में कठिनाई है, कौन आपके लिए आसान है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या है, क्या करना है, क्या कर लिए हैं, इन सब के बारे में आपको बखूबी पता होता। लेकिन ओवरथिंकिंग से ये सारे काम होते नजर आते हैं आमतौर पर बेरोजगार लोगों के जीवन में। अब ऐसे स्थिति में वो ऐसे कई गतिविधियां जो कर रहे होते हैं, वो चाहे जॉब का हो, कैरियर के लिए कोई स्किल ही डेवलप कर रहे हो, वो उसका हिसाब लेकर के खुद ही खुद को निगेटिव बना लेते हैं, सोच सोच करके कि इसमें तुम कुछ किए नहीं, मेरी उम्र इतनी हो गई, अब क्या होगा, मेरा कैसे काम चलेगा। अब ये जो सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग के सहारे, वो अभी भी जो समय उसमें दे रहे हैं वो वहाँ ना दे करके अपने काम पर देते, तो काम की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ रास्ते ढूंढ लिए जाते, या उन रास्तों पर थोड़ा आगे बढ़कर समस्या को ही ख़त्म करने में कुछ समय बिताते, उस पर काम करते, लगते, आगे बढ़ते। लेकिन इसके विपरीत वो ओवर थिंकिंग को कर कर के अपने चल रहे अच्छे खासे जीवन के उस प्रोजेक्ट को, उस पढ़ाई को, उस खास तरह के स्किल को अब डिस्टर्ब खुद से ही करना शुरू करते हैं, और ऐसे में चीज़ें बंद होने लगती हैं, वो उसके प्रति निगेटिव हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि वो अच्छी खासी चल रही अपनी चीज़ों को भी बंद करने के लिए मन बना लेते हैं, और बाद में उसके लिए पछताते भी हैं कि वो सीख लिए होते तो जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचा होता उनका। इन बातों को समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग के द्वारा आप जो ये काम करते हैं, और जितने भी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, हाँ देखिए बेरोजगारी में एक कुछ और भी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको इसमें नहीं शामिल किया जा रहा। जिन्होंने कोई स्किल तो सीख लिया लेकिन वो स्किल ही आउट ऑफ डेट हो गया, या उस स्किल का डिमांड ही अब नहीं रहा, स्किल है उनके पास, एजुकेशन उनके पास है, वो किसी खास तरह का मैकेनिक बन गए, अब जैसे कोई ऐसा डिवाइस वो बनाने लगे जो डिवाइस ही आउट ऑफ डेट हो गया, वो चीज़ें अब बंद हो गई। जैसे किसी को पुराना टीवी बनाने आता हो, VCR बनाने आता हो, CD प्लेयर बनाने आता हो, घड़ी बनाने आता हो, ऐसी कई चीज़ें जो कि अब नहीं डिमांड में है, ऐसी चीज़ें जो बिक नहीं रही हैं, रेडियो बनाने आता हो, तो अब वो क्या करेंगे, उनकी बातें नहीं हो रही हैं, उनको इस डिस्कोर्स से बाहर रखिएगा। ये उनकी बातें हो रही हैं जो कि दोष देते नजर आते हैं दूसरों को। तो अब ये जो तीसरे वर्ग के जो लोगों की स्थिति है, जिस स्थिति में चीज़ें चल रही होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा वो करते रहेंगे तो कभी वो बेरोजगारी से बाहर नहीं निकलेंगे। और खुद को बेरोजगारी से अगर बचाना है तो इस बात को समझना पड़ेगा आप सबको, कि जो दोष दे करके आप दूसरों के अंदर कमी निकाल के खुद को सेफ कर लेते हैं ना, ये इस बात को बताता है कि अपने को सेफ करने के लिए आपने कितना ओवरथिंकिंग कर रखा है, और उस ओवरथिंकिंग के सहारे आप किस हद तक दूसरों को जिम्मा लगा चुके हैं अपने नाकामयाबी के लिए। इसलिए ऐसी बातों के लिए वक्त तो आप बहुत अच्छे से निकाल लीजिएगा, लेकिन बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए भी आपको वक्त खुद ही निकालना पड़ेगा, और उसमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जितना करना है मन में काम उतना ही मन में करना सीखना पड़ेगा, और जितना उसके लिए अब शरीर के माध्यम से मेहनत करने की जरूरत है उतना शरीर के माध्यम से करना पड़ेगा। और लगे कि मेहनत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मेहनत तो लगता ही है, और देखा जाए तो आप जो आप चल रहे हैं इसमें भी मेहनत लगा होगा। बचपन में कितने बार उठें, कितने बार बैठें, कितने बार एक कदम चलें, कितने बार दूसरों की उंगलियों को थाम कर आगे बढ़ें, और कितने बार फिर उंगलियां छूट गईं तो वापस गिरे, चोट लगा, फिर उठें, फिर चलें, चलते चलते देखिए आज कैसे चल पाते हैं आप। बोलने के भी क्रम में ऐसे न जाने कितनी बार आपने गलत शब्दों को बोल रखा होगा बचपन में, लेकिन धीरे धीरे सुधरते सुधरते भाषा का विकास आपके अंदर कैसे हुआ कि आज आप धारा प्रवाह अपनी भाषा बोल पा रहे हैं या बोल पा रही हैं। आज अगर आपको फिर से नई भाषा सीखने को कह दिया जाए कि एक नई भाषा सीखिए, आज किसी व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, उसको वापस से नए सिरे से चलने की जरूरत पड़ जाए, देखिए कितना कष्ट होता है। क्या होता है कि नहीं होता है, प्रैक्टिकल बात है, होता ही है, मेहनत तो लगता ही है। ठीक वैसे ही किसी भी चीज को सीखना हो, और जब मन विकसित हो गया हो, और विशेष तौर से यदि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, तो मन के साथ ही ये समस्या होती है जिसके वजह से हम लोग सीख नहीं पाते हैं। और बचपन वाली सीख जो होती है ना, बिना मेहनत के ही लगा कि वो आप सीख ही गए, आज भी सीख रहे हैं वैसी चीज़ें बिना मेहनत के, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उससे सीखी हुई जितनी भी स्किल्स हैं आपकी, जितने भी आपने काम सीख रखे हैं, वो टाइम किलिंग का हो, एंटरटेनमेंट का हो, सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करने का हो, या ऐसी जितनी भी चीज़ें आप सीख लिए हैं, देखिए उसमें आज भी स्ट्रगल नहीं होता, मेहनत नहीं होता, आराम से बड़े ही स्मूथली आप सीखते हैं, बड़े आराम से सीखते चले जाते हैं, सीखती चली जाती हैं आप। और देखिए क्या क्या करने आता है आपको, क्योंकि मन तो वहां साथ में है, तो जहां भी मन आपके साथ हो सीखने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जहां नहीं हो वहीं समस्या हो जाती है। तो पहले को आपने समझा, वो था आपका एंटरटेनमेंट, दूसरा था आपका ओवरथिंकिंग, और ये जो अभी तीसरा आपको बताने जा रहे हैं वो है आपका कंसंट्रेशन। तो आज भी ऐसी कई चीजें हैं जिसको सीखने के लिए आपको मेहनत नहीं लगती, बचपन की तरह सीख जाते हैं, खेल खेल में सीख जाते हैं, मनोरंजन करते करते सीख जाते हैं, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन भरपूर होता है। अब देखिए मन की ऐसी न जाने कितनी गतिविधियां हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऐसा है कि उसमें लग जाएं आप तो आपका शरीर बर्बाद हो जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन वहां से भटकता नहीं। टेंशन में देखिए कितना कंसंट्रेशन, उस टेंशन से डिप्रेशन का जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, देखिए वो डिप्रेशन शरीर को कैसे बर्बाद करता है, इंसान फिजिकली मेंटली बीमार पड़ जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन वहां से आपका टस से मस नहीं होता, वहां से एकदम हटता नहीं, एकदम टिका होता है, पूरी तरह से आप फोकस्ड होते हैं उसको सोचने में। क्यों ऐसा है, ये कंसंट्रेशन ऐसी ही चीजों पर क्यों है, क्यों है ऐसा, आपकी पसंद ऐसी क्यों है, आपने जीवन में ऐसी चीजों को क्यों चुना जो जीवन बनाती नहीं बर्बाद करती हैं। जब आप देखिएगा तो ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा नजर आएगा, निगेटिविटी के लिए, टेंशन के लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, टेंशन डिप्रेशन वाली जितनी भी चीजें हैं, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन भर भर कर है। जब क्रिएटिविटी की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, खुद को एजुकेट करने की बात हो, कुछ नया सीखने की बात हो, देखिए वहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन गायब हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन वहां नहीं बन पाएगा आपका। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन की मनमानी चल रही है आपके अंदर। मन जहां आपको टिकाएगा, आपको मजबूरन उसी में जीना पड़ेगा। मन आपका, जीवन आपका, मर्जी उसकी कैसे, मन आपका, जीवन आपका, लेकिन मर्जी तो उसकी चल रही है। अब ये मन आपका तय करे कहां वो कॉन्सेंट्रेट होगा और कहां नहीं होगा। भला ये शुरू से था क्या आपके अंदर, क्या जीवन की शुरुआत से ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन की स्थिति आपके जीवन में थी? और अगर नहीं थी तो ये कब हो गई, कैसे हो गई, इसके बारे में आपने कभी खुद से पूछा क्यों नहीं? इस बात को समझना जरूरी है हर किसी के लिए कि जीवन ऐसे शुरू से नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन आप ऐसे धीरे धीरे क्यों बन गए? और यदि ऐसा बनने के बारे में आपने सोचा नहीं तो क्यों नहीं सोचा? जीवन की तमाम चीजों के बारे में सोच रहे हैं, इसका भी जवाब आपको अगले हिस्से में मिलने वाला है। ये सारी बातें आज आप समझेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है आपके पास आपके अपने काम के लिए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो ज्यादातर आपका अपना नहीं है। फिर से समझिए इस बात को, कॉन्सेंट्रेशन ऐसी चीजों में नहीं होती है ज्यादातर जो कि आपका अपना नहीं है। आपका अपना जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कॉन्सेंट्रेट खुद को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पर ये शब्द आपको सोचना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप वहां सब कुछ होता है। तो ये दूसरे का कैसे है, दूसरे का कैसे है, इस बात को समझिए। ज्यादातर चीजें आपको बताई गई कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से आप असफल हैं, किन चीजों को पाकर के आप सफल हो सकते हैं, ऐसे चीजें पाकर कौन कौन सफल हुए हैं उनको भी उदाहरण के रूप में आपको अपने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी में दिखाया गया है। आपको कैसा बनना है ये भी आपको बताया गया है, कैसे बनेंगे ये भी बताया गया है, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ये सब आपको बताया गया है, जो सब कुछ किसी दूसरे के जीवन का हिस्सा था। उस व्यक्ति को उस काम में इसलिए अच्छा लगता था जिसको करके वो सफल हो गए, क्योंकि वो उनका अपना था। आपका वो अपना नहीं है, आप अपने जीवन में उनको जबरदस्ती डाल रहे हैं, और जहां पर ये बातें जबरदस्ती वाली हो जाती हैं वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन जुटाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके अंदर फिट नहीं बैठता। जैसे ही आपके जीवन में आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन उसके साथ नहीं होता, आपका मन उसके साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मन को तो साथ हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो चीजें आपको चाहिए। एक्चुअली वो सब चीजें आपको चाहिए, लेकिन उसकी मेहनत के लिए आप तैयार नहीं है, आपने उसे अपना बनाया नहीं है अभी। आपको उपलब्धियां चाहिए उनकी, आपको उनसे फायदे जो हो रहे हैं वो चाहिए, वो लालच है आपका। आप इस बात को समझिए कि जीवन में जो कुछ आपने सीखा वो अगर काम का नहीं सीखा, जिसमें भर भर के कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो तब तक आपके जीवन में बना रहेगा जब तक आप उसके बारे में सोच करके ये डिक्लेयर ना कर लें कि ये वाकई जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, इनको जीवन में नहीं होना चाहिए। और जब तक वो आपके जीवन से जाएंगे नहीं, नई चीजें आपके जीवन में आएंगी नहीं। आप इस बात को देखिए, अपने घर में देख सकते हैं, ऐसे कई लोग हुए हैं जो बहुत गरीब हैं। सफल लोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं, जो बहुत गरीब हैं और जो अपनी ज़िंदगी एक उम्र तक खुद के लिए कुछ खास करके नहीं बिताए, मतलब अपने हुनर पे काम नहीं किया उन्होंने, जैसे तैसे ज़िंदगी बिताई, मौज मस्ती करते रहे, लेकिन फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, या शादी ब्याह नहीं भी हुआ तो घर का जो मुखिया था, जो घर चलाते थे, किसी तरह से उनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई, तो फिर क्या होता है? क्या वो फिर मौज मस्ती करते नज़र आते हैं उसी तरह से? अगर करेंगे तो घर नहीं चलेगा, लेकिन जो घर चलाने लगे, जो परिवार को आगे बढ़ाने लगे, जो पैसा कैसे भी सही रास्ते से कमाने लगे अपने परिश्रम के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, फिर उनकी ज़िंदगी में देखिए कितना बदलाव आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो इस बात के लिए समझते हैं। कैसे समझते हैं? जब वो विपत्ति आती है, वो विपदा आती है, वो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि जो वो कर रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो वो नहीं कर रहे हैं उनको शुरू करना ही पड़ेगा। वो कठोर पल, ऐसे कठोर निर्णय के लिए उनको प्रेरित करते हैं जिसकी वजह से उनके वो जितने भी गतिविधियां ऐसी थीं, ज़्यादातर, सबके सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर, जो कि उनको सीखने से, काम पर जाने से, कमाने से और ऐसे जिम्मेदारी को उठाने से रोकती थी, वो धीरे 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 उनके द्वारा लिए गए डिसीजन से ख़त्म होने लगती हैं और वो जीवन को नए तरीके से एक अलग रूप में जीने लगते हैं। जो लोग ये नहीं करते हैं वो ये सब कुछ होने के बावजूद भी गैर जिम्मेवार ही बने रहते हैं और जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते। ठीक ऐसे ही आप लोगों के जीवन में यदि वैसी कोई विपदा नहीं आई, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आई, तो आप सोचते नहीं, आप उनके ऊपर विचार नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए तो ही सोचेंगे, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कपड़े साफ करना, साफ कपड़े पहनना अच्छा लगता है, उसी तरह अच्छे ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जीवन को रोज़ बिताना उचित होता है जिससे जीवन तरक्की कर सके। और नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी गतिविधियों से लैस हैं कि कंसंट्रेशन नहीं जम पा रहा, बन पा रहा है ऐसे काम में, ऐसे एक्टिविटीज़ में जो कि जीवन को आगे बढ़ाने वाली हो, तो ऐसे में आपको इसकी जिम्मेदारी खुद तो उठानी है। समय निकालिए, बैठिए, सोचिए और विचारिए, लिस्ट बनाइए उन सारे एक्टिविटीज़ का जिसपे कंसंट्रेशन आप ढूंढते नहीं, कंसंट्रेशन अपने आप आता है। और जब लिस्ट बन जाए तो बैठिए और देखिए कि क्यों करते हैं ऐसा आप? क्या जीवन भर यही करना है? निश्चित तौर पर ऐसी कई एक्टिविटीज हो सकती हैं जो बहुत मन को भाती होंगी, बहुत अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन इसका क्या मतलब है कि इसे ही करते रहें आजीवन, पूरे जीवन सिर्फ यही करना है? अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या करें? आप विचारिए, आपको जवाब मिलते हैं, आपको ये बातें समझ में आएंगी, आप ये देख पाएंगे अपने जीवन में कि ऐसे कौन कौन से आदत हैं, ऐसे कौन कौन से आपकी गतिविधियां हैं, ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं, ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो कि आपको बर्बाद करती आ रही हैं और आज भी बर्बाद कर रही हैं। अगर आपने सही समय पर उनको नहीं चिन्हित किया, पहचाना और जीवन से बाहर निकाला, तो भविष्य में भी वो आपको बर्बाद करते रहेंगी, ना कुछ सीखने देंगी, ना आगे बढ़ने देंगी। जिसमें भर भर के कंसंट्रेशन है, जब ऐसी चीजों को आप जीवन से निकाल देते हैं या कम कर देते हैं या ना के बराबर छोड़ देते हैं तो क्या होगा फिर? वहीं पर से आप ऐसी चीजों की ओर जाएंगे जहां कभी कंसंट्रेशन के लिए आप सोचते थे कि इस पे कंसंट्रेट करेंगे तो करें कैसे, आपको फिर कंसंट्रेशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा नई चीजों को सीखने के लिए। और जिस तरह से आपने उनको स्मूथली सीखा था, बिना मेहनत के सीखा था, वैसे ही आप अपने स्किल्स को भी, ऐसे वो तमाम गतिविधियां जो कि आपको रोजगार दिला सकती हैं, करियर बनाने में मदद कर सकती हैं, बिजनेस के तमाम वो दांव पेच जिनको आपको समझना, सीखना और उनको जानना है, उन सब में वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन मदद करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। लेकिन पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि नहीं चलो नया कुछ शुरू करते हैं, कर लेंगे, तो नहीं होगा ये। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि वो जो पुराना कंसंट्रेशन का जो वो खजाना है ना, जहां पर आपने कंसंट्रेशन को भर भर कर दे रखा है, वो सब कुछ आपके नए प्रोजेक्ट को कुछ दिनों में गायब कर देंगे, उदासीन कर देंगे। आप उसके प्रति निगेटिव भी हो सकते हैं, फॉर्मेलिटी में वो चीज़ें बदल जाएंगे, धीरे धीरे छूट जाएंगी। जैसे कि आप देखिए, सबको पता है शरीर के लिए समय देना स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा होगा, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। अब इम्यून सिस्टम को बेहतर करना कितनी अच्छी बात है, इम्यूनिटी आपकी बढ़िया हो, बूस्ट कर जाए, बीमारियां कम होंगी, सेहत अच्छा होगा। अब इसके लिए सुबह जगना, शरीर के साथ में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना सपरता ही नहीं, क्यों नहीं सपरता? रूटीन बनाते हैं, सोचते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उसके जगह पर कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात में देर रात तक जग रहे हैं। अब देर रात तक क्यों जग रहे हैं? तो जग के कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके सेहत बनाने वाली सोच से ज्यादा मजबूत है। इसलिए इन बातों को सोचिए, देखिए और समझिए कि उसके ऊपर इतना फोकस क्यों है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों है, क्यों ऐसा हो गया। इन बातों को सीखना, इनके साथ में चलना बहुत जरूरी है। चीजों को देखना, समझना, प्रयोग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसी व्यवस्था है जो अगर ना हो तो कुछ भी नीरस हो जाए और कुछ भी सीख ना पाए। अब ऐसे में अपने कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कॉन्सेंट्रेशन को गलत जगह पर लगने से खुद को बचाइए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये था आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला था आपका एंटरटेनमेंट, दूसरा था ओवरथिंकिंग और तीसरा था ये कॉन्सेंट्रेशन। अब चौथे की ओर चलते हैं हम लोग, और चौथा है मन को ना कहना। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा कि मन जो है वो जो कहे, जहां लगे वही करना है। हम लोग मन को जीवन में इतना ज्यादा महत्व दे के रखे हुए हैं, इतना ज्यादा महत्व दे चुके हैं और इस हिसाब से अपने जिंदगी की बागडोर उसे सौंपे हुए हैं कि जैसा मन में विचार आता है वैसा ही जीवन जीने के लिए आप दौड़ पड़ते हैं या दौड़ पड़ती हैं। वैसा ही करना है, वैसा ही जीना है, जैसी इच्छा हुई, जैसा विचार हुआ, उधर ही चल पड़े। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि गाड़ी तो आपने ले ली लेकिन अब गाड़ी चलाने नहीं आ रहा। अब जिधर की ओर गाड़ी बढ़ गई उधर ही गाड़ी बढ़ता चला जा रहा। वो सड़क है कि खाई है, पहाड़ है, नदी है, इससे कोई मतलब नहीं। बस चालू हो गया तब चलते रहो, क्योंकि बैठे हुए उसमें है, चलाने आता नहीं, गाड़ी चल पड़ी है। अब ऐसे में यदि मन सही रास्ते पे चल पड़ा तो ठीक है, और नहीं चला तो कितनी सारी समस्या है जीवन में देख सकते हैं। और ज़्यादातर संभावना तो यही बनती है कि ये मन बड़ा सताता है लोगों को। ये मन हमेशा से ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि शुरू से ही आप ऐसे ही मन को लेकर के आए ही हैं। मन का विकास तो भाषा सीखने के बाद होता है, धीरे धीरे भाषा के माध्यम से मन को आप इस्तेमाल करते हैं, फिर मन को जीवन में, कल्पनाओं में, और मन के जो तमाम सुविधाएं हैं, मन की सुविधाओं के कारण उसको आप विकसित करते चले जाते हैं। मन में जो आज़ादी है वहाँ कोई ताक नहीं सकता, झांक नहीं सकता, कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, उस हिसाब से आप तमाम चीज़ों के लिए जो कि वहाँ करके आज़ादी का एहसास कर पाते हैं या पाती हैं, उसके चक्कर में मन को विकसित कर लेते हैं। अब करते 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 जीवन के हर क्षण में मन शामिल कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे मन के आदि हो जाते हैं, फिर ये मन आपको गुलाम बना लेता है और फिर मन जैसा कहता है वैसा ही हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि कई आपके जो डिसीजंस हैं वो आपके मन के द्वारा नहीं होने चाहिए। मन करे तो ये करेंगे, ये जो डिसीजन है ना ये गलत है, क्योंकि कई ऐसे डिसीजंस कि आज पढ़ना है, उस पढ़ाई से आपको डाइवर्जन की ओर मन ही लेके जाता है। अच्छा खासा पढ़ाई चल रहा होता है, फिर देखिए मन एक विचार लेकर आएगा और आपको वहां से लेकर कहीं और भटका देगा। लेकिन यदि आप मन को ना कहना सीख गए तो उस विचार के लिए आप ना कह पाइएगा कि बाद में सोचेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं। आपने ऐसा कभी किया ही नहीं। कई लोग तो ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब आता है तो हम लोग उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। मन एक बहुत ही जबरदस्त संसाधन है आपके जीवन को कामयाब बनाने के लिए, एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपको बर्बाद करने के लिए भी। यदि आपने इस टूल को इस्तेमाल करना सीखा तो ही आपको इस्तेमाल करने आएगा। तो मन के लिए कभी आपने कुछ किया नहीं तो ऐसा ही नजर आएगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता आपके लिए। ऐसा नहीं इसलिए हो है क्योंकि आपने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। मन को ना कहना सीखना पड़ता है, और जब आप ना कहिएगा तो वो आपके साथ युद्ध नहीं करने वाला कि ना कैसे कह दिए, बिल्कुल भी नहीं। आप पाएंगे कि आपके ना कहने के बाद वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, हाँ वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा जरूर, वो उन चीजों को, उन बातों को बार बार आपके सामने लेकर आएगा जरूर कि ये करते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से सोचते हैं। लेकिन आपके ना कहते रहने की वजह से उसके लिए क्लियर हो जाएगा कि आप बदल रहे हैं, और इस बदलाव में आप जो कह रहे हैं वही मन को करना पड़ेगा। ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, ना तो ना, हमेशा हाँ कहने की जो ये प्रवृत्ति है वो बड़ी खतरनाक होती है, और ये ना कहना गलत नहीं होता, और कई बार तो समाज में भी ना कहना गलत नहीं होता कुछ मामलों में। तो मन को भी ना कहना सीखना पड़ेगा। यह मन को जो ना कहने की जो व्यवस्था है ना, यह विकसित करनी पड़ती है, थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। इस कठोरता में ऐसा नहीं है कि आप किसी का नुकसान करने वाले हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि आप इन सब के सहारे जीवन में आगे बढ़ते नजर आएंगे। क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करेंगे, जब कोई काम कर रहे होंगे और वहाँ पे कोई अनावश्यक विचार आए, ऐसा कोई विचार जो आपको वहाँ से भटका कर किसी दूसरे बिंदु पर लेके जाए और वहाँ किसी दूसरे विचारों के साथ आप खो जाएं, ऐसा होने से खुद को आप रोकने के लिए ना कहकर तैयार कर लेते हैं। आपके अंदर एक खास तरह की स्किल डेवलप होती है माइंड मैनेजमेंट का। अपने मन को मना करना सीखिए, ये मना करना बड़े काम का होता है, क्योंकि यदि सही समय पर आपने मन को मना कर दिया तो फिर वो मन कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी आपकी मदद करने लगता है। ये मना करने से कॉन्सेंट्रेशन में भी डेवलपमेंट होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। इन चीजों को समझना जरूरी है। मन के साथ में जीवन निश्चित तौर पर एक अलग तरीके से विकसित होता है, और यही मन आपको इंसान बनाता है। ये भाषा की जो तकनीक है, यही दूसरों से आपको अलग बनाता है। पूरे दुनिया के जितने भी जीव जंतु और पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, इन सब की तुलना में हम इंसानों की भाषा ज़्यादा विकसित है। हम अपनी भावनाओं को भाषा के शब्दों में पिरोकर बहुत अच्छे से दूसरों के सामने रख पाते हैं, उनको अपने फीलिंग्स से अवगत करा पाते हैं, लेकिन मन में ये एक अलग लेवल पर हो जाता है, और यही दूसरों के साथ नहीं होता। और हम लोग दूसरों से इसीलिए अलग हो जाते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी जी पाते हैं, और अपने बल पर देखिए क्या क्या कर पा रहे हैं। इन बातों को समझना जरूरी है कि मन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक बहुत ही पावरफुल संसाधन है जीवन को विकसित करने के लिए। और ये तभी हो पाता है जब आप मन को ना कहने में सफल हो पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ना ही कहते रहेंगे, समझना जरूरी है। मन के कई काम हैं, लेकिन अगर आपने कोई जरूरी काम के दौरान मन के साथ में डिसीजन ले लिए कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ऐसे में आपके पढ़ाई के प्रति जो आपका रुझान है, इंटरेस्ट है, वो घट जाएगा। और वो इंटरेस्ट उसको छोड़कर जो काम करने आप चल दिए उसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब पढ़ाई में मन अगली बार कम लगेगा, उस काम को करने में ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने मन को ना कह दिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपकी पढ़ाई में ऐड हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बोले कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और उस काम में कम हो जाएगा। आप जिस चीज में रहेंगे, आप जिस चीज के साथ चलेंगे, आप जिस चीज में बने रहेंगे, आप पाएंगे मन को ना कहने के इस हुनर को विकसित करने के दौरान कि जहां आप हैं वहीं आपका मन आपके साथ होने के लिए धीरे 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 तत्पर होता नजर आता है। यह तत्परता आपकी, आपके मन की जिंदगी के स्वरूप को ही बदल देता है। जीवन फिर ऐसी चीजों में नहीं फंसता, ऐसी चीजों में नहीं भटकता जो सीख कर या जहां कॉन्सेंट्रेशन देकर अपनी ऊर्जा समय आप लगाने के बावजूद भी बेरोजगारी ही पाते हैं, बल्कि आप फिर ऐसे चीजों में इन सबको लगा पाइएगा जिनसे रोजगार के नए नए साधन आपके लिए उपलब्ध होते हैं, रोजगार के नए नए रास्ते आपको नजर आते हैं, समस्याओं के तमाम संसाधनों को आप जुटा पाते हैं जिससे उनका समाधान हो सके। ऐसे कई समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए कई तरह के संसाधन आपको चाहिए जो नहीं होते, उनको भी आप जुटा पाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे संसाधनों में कॉन्सेंट्रेशन का अभाव होता है और वहां यह कॉन्सेंट्रेशन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इन चीजों को समझना, देखना, इनके साथ आगे बढ़ना जीवन की तरक्की ही है, तो इसको ही क्यों ना किया जाए। क्यों ऐसे काम को करें जिससे जिंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में आप फंसकर कितनी सारी यातनाएं आप झेल रहे हैं। इन बातों को समझिए। ये चार बातें जो आपको बताई गई, पहला एंटरटेनमेंट, दूसरा ओवरथिंकिंग, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन और चौथा ये मन को ना कहना, ये आपकी निजी जिम्मेदारी है। ये किसी सिस्टम, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी निजी जिम्मेदारी है कि आप इसको दुरुस्त करें, अपना ये व्यवस्था ठीक करें। अब ये अगर आपने ठीक कर लिया तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वे एकदम से जीरो से उठ करके बहुत ऊंचाइयों तक गए और बहुत कुछ उन्होंने कर लिया, उनके पास ये करने की क्षमता थी। वो एंटरटेनमेंट में खुद को व्यस्त नहीं रखते थे। आप ऐसा सुनेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो अपने सेक्टर में बहुत आगे हैं, वो टीवी नहीं देखते, बहुत कम देखते, काम में ही बिजी रहते हैं, वहीं से उनका सब कुछ हो रहा है। वो ओवर थिंकिंग करके खुद को परेशान नहीं करते, अपने काम में बने रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होता क्योंकि फालतू चीज़ों में वो कंसंट्रेशन को देते ही नहीं, वो सबको कंसंट्रेशन उनके ज़रूरी काम पर ही होता है, और वो फालतू चीज़ें जो मन में उनके आती हैं उनको बड़े आसानी से, बड़े आराम से ना कह के उनको टाल देते हैं। और जब ऐसा आप करेंगे तो आपके पास जो कुछ होगा, जितना कुछ ही होगा, आप उसी से अपने काम को आगे बढ़ाना सीख जाएंगे। और आज तो ऐसा जमाना है जहां आप एक तरफ एंटरटेनमेंट से बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ वही इंटरनेट और वही आपके स्मार्टफोन लैपटॉप्स के जरिए आप नई नई तमाम चीजों को कई बार तो फ्री में सीखने में सक्षम हैं, और ये सारी चीजें आज उपलब्ध हैं। YouTube पर ऐसे न जाने कितने ट्यूटोरियल्स हैं जहां पर आप बहुत कुछ सीखने में समर्थ हैं। ऐसे बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप फ्री में चीजें सीख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्किल्स को कोर्स बनाकर बेच रहे हैं, तो आप उन कोर्स को परचेस करके खुद को विकसित करने में कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चीजों को समझने की जरूरत है, ऐसा करके आप आगे बढ़िए, जीवन को जहां है वहां से बाहर निकालिए। और ये जो बेरोजगारी का ठप्पा है इसको मिटा दीजिए। और ये कहना कि दूसरों के चलते हम ऐसे हैं, नहीं, पहले खुद को ठीक कीजिए। जिस दिन आप खुद को ठीक कर लीजिएगा, जिस दिन आप एंटरटेनमेंट को कंट्रोल में रखिएगा, जिस दिन आपका ओवरथिंकिंग नहीं होगा, जिस दिन आपका कंसंट्रेशन आपके काम पर होगा, और जब आप अपने मन को ना कहने में सफल हो जाएंगे, उस दिन जितने में भी आप है ना, उतने से ही आप अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देंगे। वो जितने भी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन में उनको एग्जाम देना है, जॉब लेना है, क्या है जो उनको डिस्टर्ब करता है? ये एंटरटेनमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी ओवर थिंकिंग है, ये मन को ना नहीं कहना, जिसके चलते वो क्या करते हैं, पढ़ना ही तो है सिर्फ, उसमें वो पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय एंटरटेनमेंट में चले गए, एक नोटिफिकेशन आया, अब न जाने कितने देर बाद वो फ़ोन को छोड़ेंगे, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं, कोई पता ही नहीं। अगर शॉर्ट्स देखना शुरू किए, घंटों बीत गया, ओवर थिंकिंग में पड़ गए, मन में ही पड़े हुए हैं, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मन में सोचते सोचते न जाने कहाँ कहाँ सोच कर आ गए, और फिर बैठ करके एक दिन हिसाब निकालेंगे और पढ़ाई के लिए भी सोच लेंगे कि पढ़ाई उढ़ाई में कुछ रखा नहीं है, बस यूं ही पढ़ते जा रहे हैं, कुछ होगा नहीं, मेरा तो निकलेगा नहीं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, दिस दैट, अपने को ही डिमोरलाइज कर लेंगे, अपने में ही न जाने क्या क्या कर लेंगे, और दूसरों में तो करते ही रहते हैं। अब इन सब के बीच में पढ़ाई में बैठेंगे भी तो कंसंट्रेशन नहीं, कभी इधर भटक गए, कभी उधर भटक गए, अब उनको बंद करके कुछ दूसरा शुरू कर दिए, पढ़ाई के साथ भी वही व्यवहार, और मन को ना नहीं कहने के चलते बैठेंगे पढ़ने और करने कुछ और लगेंगे। ऐसी न जाने कितनी गतिविधियां हैं जो जीवन में आपने विकसित करके पहले से रखी हुई हैं। इसलिए बेरोजगारी के जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लीजिए, इन कमियों को जीवन से बाहर निकालिए, और उसके बाद देखिए कि आपको रोजगार पाने से कौन रोकता है। उसके बाद देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं भी हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं भी हो, आपके पेरेंट्स उस हिसाब से नहीं भी हो, आपको वैसे टीचर नहीं भी मिले हैं, तो भी आप अपने स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत भयंकर काम कर लेंगे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, वो भी बन सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत कहीं छोटे से ही होगी। वहां पहुंचकर आप अपने आप को और बेहतर करना चाहें तो ऐसी चीजों को ढूंढ करके, सीख करके, वहां भी करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत होनी जरूरी है। वैसे ये चार कारणों को आपके सामने रखा गया, ऐसे और भी कई कारण हैं, बहुत से ऐसे सवाल थे जिसको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि समय को भी देखना जरूरी है। तो ऐसे में इन चारों को देखिए, ये मोटे तौर पर ऐसे वजह हैं, ऐसे कारण हैं जो कि इंसान को बेरोजगार बनाने में समर्थ है। क्योंकि जिस हिसाब से मनोरंजन के दौर से इंसान गुजर रहा है, एंटरटेनमेंट का जो दौर चालू हुआ, इस दौर से कोई नहीं बचा है। एक समय में बच्चों को डांट पड़ती थी और आज वही डांटने वाले पेरेंट्स खुद उस मनोरंजन के सहारे अपने दिन के कई घंटे बिता रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझने की आवश्यकता है, चीजें कैसे बदल जाएंगी, कब बदल जाएंगी, किस रूप में आ जाएंगी, इसका प्रिडिक्शन करने से बेहतर है कि आप काम में लगिए और खुद को तैयार रखिए और सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर बनाए रखिए। और इन चारों चीजों के लिए खुद को तैनात कीजिए। इंटरटेनमेंट, ओवरथिंकिंग, कंसंट्रेशन और मन को ना कहना, ये चार चीज आपने तैयार कर ली तो समझ लीजिए कि ये आपके रोजगार की तैयारी है। निश्चित तौर पर यह कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं है, किसी स्किल के लिए कुछ खास तरह का ट्रेनिंग नहीं है, ये आपकी निजी ट्रेनिंग है। आप जब ऐसा करने में सफल हो जाते हैं ना, फिर कोई भी ट्रेनिंग लेना हो, कोई भी एजुकेशन लेना हो और किसी भी तरह के काम को सीख करके उसमें आगे बढ़ना हो, आप आराम से बढ़िएगा, स्मूथली बढ़िएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़िएगा, मन की कोई रुकावट नहीं होगी, मनोरंजन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ओवरथिंकिंग आपके काम को बंद नहीं करेगा, आप प्रॉपर वे में आगे बढ़ते रहिएगा। इसलिए इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, देखिए। निश्चित तौर पर सवाल आपके मन में उठ सकते हैं, कैसे, क्या सपोर्ट को आप इसके बारे में सवाल भेजिए, सपोर्ट से आपको बातें पता चलेंगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब आज नहीं मिले, लेकिन जवाबों के लिए दूसरे रास्ते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपके सवाल होते हैं तो आपको उस प्रोग्राम का लिंक या जो भी सुनने के दूसरे तरीके हैं वो आप तक पहुंचते हैं, आप उसके द्वारा जवाब सुन पाते हैं। इन चीज़ों को समझिए, देखिए और जीवन में इंटरटेनमेंट, ओवर थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन और मन को ना कह के अपने बेरोजगारी के जाल से खुद को बाहर निकालिए और जीवन को तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाइए। तो आज के संडे स्पेशल डिस्कोर्स में, बेरोजगारी की आत्मकथा में, आपने इन सबके बारे में समझा, देखा, जाना, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, और यदि प्रश्न हो तो जवाब कहाँ से मिल सकते हैं। इन सबको देखते हुए, समझते हुए जीवन को लेकर के आगे निरंतर चलने का प्रयास करते रहिए, चीज़ें बदलते रहिए। तो आज के संडे स्पेशल डिस्कोर्स में बस इतना ही।